ఓం శాంతి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఆజ్ కా హమారా జో టాపిక్ హై జర్నీ విత్ హార్మనీ. ఆప్ సబ్నే జర్నీ కీ హై ఔర్ జర్నీ కర్కే యహాన్ ఆయే భీ హై. ఆప్ సబ్ మే సే బహుత్ సారే లోగ్ హై జో ఫ్రీక్వెంట్లీ జర్నీ కర్తే హై, కుచ్ లోగ్ హై జో ఒకేజనలీ కర్తే హై. అబ్ జర్నీ ఫ్రీక్వెంట్లీ హో యా ఒకేజనలీ హో, తీన్ ప్రకార కీ జర్నీ హోతీ హై. ఏక్ జర్నీ ఐసీ హోతీ హై, ఆప్ సబ్నే ఫీల్ కియా హోగా అప్నే అప్నే జర్నీ మే, జిస్మే ఖుషీ హోతీ హై, జాయ్ హోతా హై, ఎంజాయ్మెంట్ హోతీ హై, ఏక్ ఎక్సైట్మెంట్ హోతీ హై. ఐసీ జర్నీ కో హమ్ తాకతే రహతే హై, వెయిట్ కర్తే హై కబ్ వో హమారా డేట్ ఆయే, హై నా. మన మే ఖుషీ హోతీ హై, జైసే హిందీ మే కహతే మన మే లడ్డూ ఫూటతే హై, హై నా. కబ్ వో డేట్ ఆయే, హమ్ జర్నీ కరే, బహుత్ సారే ఎక్సైట్మెంట్ హోతీ హై ఉస్ జర్నీ మే. తో ఐసీ జో జర్నీ హోతీ హై నా, ఉస్మే హమారే బాడీ ఔర్ తన్ ఔర్ మన్ దోనో జర్నీ కర్ రహే హోతే హై. తన్ తో జర్నీ కర్ రహా హోతా, మన్ భీ జర్నీ కర్ రహా హోతా, ఔర్ మన్ బల్కి ఉడ్ రహా హోతా హై, యా ఐసే కహే కి ఖుషియో కే ఝూలే మే ఝూల్ రహా హోతా హై. ఔర్ ఏక్ జర్నీ ఐసీ హోతీ హై జో హమ్ నహీ చాహతే హై లేకిన్ జానా పడ్ రహా హై, మతలబ్ హమారీ ఇచ్ఛా నహీ హై, జిస్మే హమారీ తన్ తో జర్నీ కర్ రహా హోతా లేకిన్ మన్ జర్నీ నహీ కర్ రహా హోతా హై. తో ఆప్ దేఖేంగే అక్సర్ ఐసీ, ఆప్ సబ్నే మహసూస్ భీ కియా హోగా, అప్నే ఆస్ పాస్ మే దేఖా భీ హోగా. తో ఐసీ జర్నీ జో హోతీ హై నా, కయీ బార్ బడీ బోజీలీ లగ్తీ హై, బడా భారీ లగ్తా హై, ఏక్ పనిష్మెంట్ కీ తరహ లగ్తా హై కయీ బార్. తో తీసరీ ప్రకార కీ జో జర్నీ హై వో దోనో కే బీచ్ మే హై, మతలబ్ నా ఖుషీ నా గమ్, కభీ ఖుషీ కభీ గమ్, దోనో తరఫ రహతా హై. జ్యాదాతర్ ఐసీ జర్నీ, ఉదాహరణ కే లియే జైసే హమ్ లోగ్ బిజినెస్ టూర్ కర్తే హై యా ఆఫీషియల్ టూర్ మే, ఆప్ సబ్కో పతా హోగా కి ఆఫీస్ కే టూర్ మే జానా హై, జానా హై, లేకిన్ కోయి ఎక్సైట్మెంట్ నహీ హై, లేకిన్ కోయి అఫ్సోస్ భీ నహీ హై, జర్నీ చల్ రహీ హై. తో ఆప్ సబ్ యహాన్ పర్ ఆయే హై, ఆప్కి జర్నీ కౌన్ సీ హై, ఏక్ నంబర్ వాలీ, దో నంబర్ వాలీ, తీన్ నంబర్ వాలీ, సైన్ కర్కే బతాయేంగే, వెరీ గుడ్, ఏక్ జోర్దార్ తాలియాన్. అచ్చా, అక్సర్ జో జర్నీ హమ్ దేఖతే హై, ఆప్ సబ్నే మహసూస్ భీ కియా హోగా కి జో హమారీ ఎక్సైట్మెంట్ హోతీ హై నా జర్నీ కి, వో పతా చల్ జాతా హై, హమారీ బాడీ లాంగ్వేజ్ సే భీ, హమారీ ఖుషియో సే దూసరో కో భీ పతా చల్ జాతా హై. బడే నాచ రహే హోతే హమ్ లోగ్ కి జానా హై, ఇస్ జర్నీ కర్నీ హై, కయీ బార్ తో హమ్ బహుత్ పహలే సే తయారీ కర్నే లగ్ జాతే హై నా. ఔర్ ఐసీ జర్నీ ఆప్ సబ్నే దేఖా హోగా కి జబ్ ఐసే కో పాసెంజర్ ఆప్కో మిల్తే హై జో బహుత్ ఎక్సైటెడ్ హోతే హై, యా జర్నీ బడీ ఖుషీ సే కర్ రహే హోతే హై, తో వో ఉస్ ఆస్ పాస్ కే మాహోల్ కో భీ ఖుషనుమా బనా దేతే హై, వో ఆప్కో భీ షేర్ హోల్డర్ బనా దేతే హై. మే ఏక్ బార్ మే జర్నీ కర్ రహా థా, తో కుచ్ బచ్చే అప్నే నానీ కే ఘర్ జా రహే థే, పేరెంట్స్ భీ థే, బహుత్ ఎక్సైటెడ్ థే, ఖుషియో సే అంతాక్షరి ఖేల్ రహే, నాచ రహే, గా రహే. మే ఉన్కీ ఖుషియో కో దేఖ రహా థా, మే భీ మన్ మన్ మే ఖుష్ హో రహా థా. తో ముజే భీ కహా, అంకల్ ఆప్ భీ హమారే సాథ్ శామిల్ హో జావ్, తో మే భీ ఉన్కే సాథ్ అంతాక్షరి మే శామిల్ హో గయా. దేఖతే దేఖతే వో పూరా కేబిన్ జో నా ఏక్ ఖుషనుమా బన్ గయా, ఏక్ హసీ కా మాహోల్ బన్ గయా. ఆప్ సబ్నే ఐసా అప్నీ అప్నీ జర్నీ మే కభీ నా కభీ మహసూస్ కియా హోగా. అచ్చా, జో దూసరే నంబర్ కే పాసెంజర్ హోతే హై యా ట్రావెలర్స్ హోతే హై, జో జర్నీ మజబూరీ మే కర్ రహే హోతే హై, దుఖీ హోకే కర్ రహే హోతే హై, తో వో లోగ్ భీ అప్నే ఆస్ పాస్ కా మాహోల్ వైసా బనా దేతే హై, బడే ఉదాస్ బైఠే హోంగే. అగర్ ఆప్నే ఉన్సే పూచ్ లియా భాయి సాహబ్ ఆప్ కహాన్ తక్ జాయేంగే, తో వో ఆప్కో జవాబ్ ఆంఖో సే దేంగే, ఔర్ ఆప్ ఉన్కీ ఆంఖో కీ భాషా కో సమజ్ భీ జాతే హై. పరమాత్మా నే గాడ్ గిఫ్ట్ సబ్కో దియా హువా హై, తో ఆప్ ఉన్కీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కో సమజ్ జాయేంగే, వో యహీ కహ రహా హై కి మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ హై నా. తో ఆప్ క్యా కరేంగే, ఆప్ భీ ఖామోష్ బైఠేంగే, ఫిర్ వో భీ ఖామోష్, ఆప్ భీ ఖామోష, ఆస్ పాస్ మే కోయి హసనే కీ నౌబత్ మతలబ్ జరూరత్ భీ నహీ కరేగా, ఉస్కో దేఖ్ కే కిసీ కో హసీ భీ ఆ రహీ హోగీ నా, తో ఉస్కో దేఖ్ కే అప్నీ హసీ భూల్ జాయేగా. తో వో పూరా మాహోల్ కైసా హో జాయేగా, వైసా హో జాయేగా, ఏక్ మతలబ్ జైసే కోయి మాతమ్ మే గయే హమ్ లోగ్ హై నా. తో అక్సర్ ఐసా. అచ్చా, ఫిర్ జబ్ హమ్ లోగ్ జర్నీ కర్తే హై, జర్నీ సే పహలే హమ్ లోగ్ చార్ పాంచ్ చీజే కన్సిడర్ కర్తే హై, మెయిన్లీ హమ్ లోగ్ డెస్టినేషన్ చాయిస్ కర్తే హై, హమారా డెస్టినీ క్యా రహేగా. తో ఉస్మే హమ్ లోగ్ సబ్సే పహలే పర్పస్ దేఖతే హై, హమారా పర్పస్ క్యా హై. కయీ బార్ క్యా పర్పస్ భీ జో హోతా నా, వో భీ హమారీ జో జర్నీ కో ఖుషనుమా బనాతీ హై. అగర్ హమ్ ఛుట్టియాం మనానే జా రహే హై, ఘూమనే జా రహే హై సపోజ్, తో వో జో జర్నీ హోగే నా, వో హమారే మన్ కే అందర్ ఏక్ ఉమంగ్ ఉత్సాహ లాయేగీ హై నా, ఏక్ ఆటోమేటిక్ హమారే అందర్ ఏక్ ఎక్సైట్మెంట్ రహేగా కి హమ్ ఘూమనే జా రహే హై. ఫిర్ హమ్ జో దూసరా చీజ్ హమ్ దేఖతే హై, वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कई बार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमारी खुशियों का आधार रहता है। आप सबने अपनी अपनी जर्नी में देखा होगा, पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे कि फ्लाइट से जाएंगे कि बाय रोड जाएंगे, फिर हम लोग अपना सुविधा भी देखते हैं उसके अनुसार। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी में जाएंगे कि सेकेंड एसी में कि थर्ड एसी में जाएंगे, बाय रोड भी जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे। अच्छा, बहुत बार आप सबने नोटिस किया होगा एक चीज, ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता ना, ये भी कई बार हमारी खुशियों का एक आधार बन जाता है, बेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नई गाड़ी लेके जा रहे हैं बाय रोड, तो एक नई गाड़ी में जा रहे हैं तो वो जो ट्रेवल होता है, वो जो जर्नी होती है, थोड़ी एक्साइटेड ज्यादा हो जाए, जो हमारा एक्साइटमेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सपोज आप यूजुअली थर्ड एसी में जाते हैं और इस बार आपको फर्स्ट एसी में कहीं से टिकट मिल गया, आप फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, तो थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है ना। तो आप इकोनॉमी क्लास में जर्नी करते हैं, बाय द वे आपको इस बार बिजनेस क्लास की टिकट मिली, तो जर्नी वही होती है और डेस्टिनी भी वही होती है, लेकिन वो जो जर्नी थोड़ा और ज्यादा एक्साइट, ऐसा होता है कि नहीं अक्सर। फिर जो मेन जो फैक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी। आप सबने जर्नी में एक चीज मार्क किया होगा, कंपनी बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार क्या होता है, हमारी बहनें बताती है कि जब उनको पता लगता है कि हमारा कंपेनियन कौन है, उसके हिसाब से भी जर्नी डिपेंड करती है। पूछेंगे, गुप्ता जी जा रहे हैं क्या? बोले हाँ गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी जा रहे हैं तो फिर बहन जी हमारा कैंसिल कर दो। तो बहन जी पूछेंगे, भाई क्यों? नहीं बस कैंसिल कर दो। अरे बहन जी तीन बार पूछे, भैया हुआ क्या? बड़े बोरिंग है बहन जी, है ना। कई अक्सर आपने ये सब चीज नोटिस किया होगा। अच्छा, कई बार वही कंपनी, अच्छा गुप्ता जी जा रहे हैं तो बहन जी हमारा लिखो। बोले क्यों? बोले अरे उनके साथ तो जर्नी करने का मजा ही आ जाता है, पता ही नहीं चलता रास्ता कैसे करते है। तो आप सबने ये सब महसूस किया कि नहीं? तो कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी जर्नी में। बहुत बार हमने देखा होगा, कंपनी अगर थोड़ी अच्छी होती है तो जर्नी का भी मजा आता है। जिंदगी की जर्नी भी बिल्कुल इसी प्रकार है। द जर्नी ऑफ लाइफ इज जस्ट इक्वल टू जर्नी, जो ये फिजिकल जर्नी हम करते हैं। अच्छा चलो, जर्नी जब हमारी फिक्स हो जाती है, हमारा डेस्टिनी भी फिक्स हो जाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी फिक्स हो जाता है, फिर हम लोग पैकिंग करते हैं। अच्छा, कई बार आप सबने एक चीज महसूस किया होगा कि पैकिंग भी हमारी जो मनोस्थिति होती है ना, हमारे एक्साइटमेंट के हिसाब से होती है। अगर खुशी वाली जर्नी होती है ना, तो 10 दिन पहले से पैकिंग शुरू, ये भी डालो, वो भी डालो, ये भी डालो, ये भी लेके जाना है। आप सबने ये नोटिस किया होगा, है ना। अच्छा, कई बार पैकिंग अपने नेचर के अकॉर्डिंग भी होता है, हॉबी के। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन होगा ना, तो खेल के दो चार चीजें पैक करेगा, खाली टाइम में खेल लूंगा। कोई पढ़ने लिखने वाला होगा ना, दो तीन किताबें भी रख लेगा खाली टाइम में अपने। अच्छा, बहुत लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, ठूस ठूस के भर लेते हैं बैग में, ये भी डालो, चार पैकेट चिप्स के डालो, दो पैकेट नमकीन। घर वाली वाइफ बोलेगी बैग भर गया है, दो पैकेट चिप्स के बच गए, नहीं नहीं उसको डालो, भले सेविंग किट निकाल दो बाहर, दो दिन बिना सेविंग के रह जाऊंगा, लेकिन आलू के चिप्स चाहिए ही चाहिए, है ना। आप सबने ये भी नोटिस किया, इशारा कर रहे हैं तालियां जोरदार। तो अक्सर हमारी पैकिंग भी हमारी मनोस्थिति के हिसाब से होती। खाने पीने के शौकीन आप सबने देखा होगा, वो कहेंगे भले दो चार पैकेट, भले दो टॉवल एक टॉवल निकाल दो, एक टॉवल में चार दिन गुजार लेंगे, लेकिन खाने का सामान कम नहीं होना चाहिए, वो भरो, है ना। ऐसा भी होता है। तो जो हमारी पैकिंग होती है वो हमारे मनोबल मनोस्थिति के हिसाब से होती है। लेकिन कुछ एक पैकिंग होती है जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। आप सबको मालूम हो कि कुछ एक चीजें जो बहुत अति आवश्यक है, उनको आप अवॉइड कर नहीं सकते। जैसे पासपोर्ट है, बोर्डिंग पास है, मेडिसिन वगैरह है, पैसे हैं, ये कंपलसरी है ना। इसको आप मतलब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना आपकी जर्नी पॉसिबल नहीं है। ठीक एग्जैक्टली इसी प्रकार जर्नी ऑफ लाइफ में भी कुछ एक चीज कंपलसरी है, कुछ एक चीजें जो आपको चॉइसेस हैं, लेकिन कुछ एक चीजों में आपको चॉइसेस नहीं है, यू हैव टू डू, ठीक है ना। तो जो तो जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन रूपी जर्नी, अक्सर जो मेन चीज है जो हम सबको बांध के रखती है जर्नी में, आप सबने देखा होगा, एक दूसरे को जो कनेक्टेड करती है वो है रिलेशन, हमारे बीच में जो संबंध, एक दूसरे से अच्छे मधुर संबंध हम सबको एक दूसरे को बांध के रखती है। आज संबंधों में थोड़ी बहुत कड़वाहट है, जिसे जर्नी ऑफ लाइफ जो है ना वो हमारी डिपेंड करती है हमारे रिलेशंस के साथ। तो जिस प्रकार आपने फिजिकल जर्नी, जैसे कल आप सबने बहुत अच्छे से सुना हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी को जो कह रही थी, ये जो जर्नी है वो एक्सटर्नल है और जर्नी ऑफ लाइफ जो है वो इटर्नल है। जैसे इनमें ये सारे प्रिकॉशंस चाहिए, सारे पैकिंग चाहिए, सारे सामान चाहिए, एग्जैक्टली उसी प्रकार जर्नी ऑफ लाइफ में भी, इटर्नल में भी हमारे को कुछ चीजें चाहिए। तो वो क्या चीजें हैं जो जर्नी ऑफ लाइफ को शानदार बनाती है, यादगार बनाती है, वो कुछ चीजें हैं जो आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट मेक्स जर्नी ऑफ लाइफ एंजॉयबल? तो जो पहला है वो है लविंग रिलेशंस, लविंग रिलेशनशिप्स। आज दुनिया में इस एक पोएम थी हमारे को 10th में विलियम वॉर्ड्सवर्थ की, व्हाट दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, नो टाइम टू स्टे एंड स्टेयर, बहुत अच्छी एक कविता थी। आज आप देखेंगे रिलेशंस में कितना फर्क पड़ गया है। एक टाइम था जब हम कहते थे कि मनी, पैसे को हम यूज करें, मनी फॉर यूज, और रिलेशंस जो है वो है हम उसको सेव करें, उसको मतलब अच्छे से बना के रखें या उसको वैल्यू दें। लेकिन आज इसके बिल्कुल विपरीत है। आज हम क्या करते हैं, मनी को सेव करते हैं, मनी को वैल्यू देते हैं, रिलेशंस को यूज करते हैं। अक्सर आप सबने जो थोड़े मतलब मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, जो थोड़े 40+ हैं, 50+ हैं, उन्होंने देखा होगा कि बचपन में या आपके आसपास में जब हम कोई घर में आते थे मेहमान या कोई ऐसे भी घूमने आते थे, तो यूजुअली हम उसको खाना खाए बिना जाने नहीं देते थे, है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं? वो बोलेगा भी, मैं अभी अभी खा के आया हूं, पेट में जगह नहीं है, तो भी कहें अरे ऐसे कैसे होगा, बिना खाए कैसे जाएंगे, हमारे घर आए और बिना खाए जाओगे, ऐसा हो सकता है? वो खा के भी आया होगा तो भी कुछ ना कुछ उसको खिलाते थे, है अनुभव ऐसा? प्लीज हाथ खड़े करेंगे जिसको ऐसा अनुभव है। मतलब वो मना भी कर रहा हो कि मैं खा के आया, फिर भी बोले नहीं नहीं आपको खाना तो पड़ेगा, हमारे घर आए हो बिना खाए नहीं। आज बिल्कुल विपरीत है। आज पूछते हैं कि भाई साहब आप खा के आए हो या जाके खाओगे? आज पूछते हैं भाई साहब आप खाना खा के आए या जाके खाएंगे? एक शायर ने कहा है कि एक दौर था जब सोचा करते थे, एक दौर था जब सोचा करते थे कि मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आप में से बहुतों ने ये फील किया होगा, मैंने बहुत पर्सनली फील किया है इसको, बहुत एंजॉय भी किया है, डांट भी सुनी है। जब हमको पता चलता ना आज मेहमान आने वाले, तो हम जान के बहाना बनाते थे लेट खाएंगे थोड़ा, क्योंकि हमको पता है मेहमान आ रहे हैं, मैंने 4-5 आइटम एक्स्ट्रा बनता है, कुछ पकौड़े बनेंगे, मिठाई बनेगी, तो मम्मी कहती भी बेटा तुम लोग फटाफट खा लो, नहीं अभी भूख नहीं है हमें, बाद में खाएंगे, क्योंकि हमको पता है थोड़ी देर बाद में खाएंगे तो 2-4 आइटम एक्स्ट्रा मिलेगा। आप सबको ये अनुभव है, जिसको है प्लीज हाथ खड़े करो। ओके, तो शायर कहता है कि एक दौर था जब सोचा करते थे कि मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, एक आज का दौर है जब सोचते हैं ये कमबख्त कब जाए तो खाना खाओ। हम इस जर्नी ऑफ लाइफ में रिलेशंस का, संबंधों का बहुत बड़ा महत्व है। लोगों के साथ हमारे आपसी संबंध, मित्रों के साथ, परिवार के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम संबंधों को महत्व नहीं देते, स्थूल चीजों को, पैसों को महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस जर्नी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे। आज अफसोस इस बात का है कि हम लोग जर्नी ऑफ लाइफ में पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते। एक बाप ने अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल खरीद के दिया, और वो नया मोटरसाइकिल खरीद के दिया, उससे बाय मिस्टेक गिर गया, उसमें थोड़े मतलब डेंट आ गया, कुछ आ गया, तो गुस्से में पिताजी ने उसको जोरदार झापड़ मारा, और वो झापड़ इतना जोरदार था कि उसकी वहीं मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। सारी जिंदगी वो पछताता रहा कि ये सब मैंने किसके लिए इकट्ठा किया था। कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे से नुकसान को मतलब अपनी जिंदगी से बड़ा सहमत समझ लेते हैं, और फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ये जो चीजें हैं, ये वस्तु वैभव जो है, ये यूज करने के लिए है। ये हमें किस लिए है? यूज करने के लिए, लेकिन जो रिस्टेन आते हैं वो सदा काल के लिए। आजकल आप सब देखते होंगे ज्यादातर, मैं आई थिंक 15-16 साल पहले बेंगलोर गया था, तो मेरा एक दोस्त एयरपोर्ट के पास ही रहता था, तब उसने मुझे दिखाया पहला, मतलब इट वॉज द फर्स्ट प्ले स्कूल बना था। मैंने कहा ये प्ले स्कूल क्या होता है, बोले छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, शाम को आते टाइम फिर बच्चे को लेके आते थे। अभी मैं गया तो मोर देन 2000 से ज्यादा प्ले स्कूल खाली बेंगलोर सिटी के अंदर। बात तो और है, दो चीजें बढ़ती जा रही है, प्ले स्कूल, ओल्ड एज हाउस। आपने मार्क किया होगा, माँ बाप बड़े बड़े मतलब मेहनत से, बड़ी आशाओं से, कई बार जमीन गिरवी रख के, कई बार मकान गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं। वही बच्चा जब बड़ा अलग हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, कुछ बन जाता है, तो माँ बाप को बोझ समझने लगता है, कई बार घर से निकाल देते। एक इंसिडेंट है, एक माता जी को, एक माँ थी जो विडो थी, तो बेटे और बहू ने उसको वृद्धाश्रम में छोड़ने का फैसला किया। तो जब उसको ओल्ड एज हाउस में छोड़ रहे थे तो फॉर्मेलिटीज किया, पैसे वैसे भरे, फिर उसको जब उसका रूम दिखाया गया माता जी को, तो वो रूम देखी, माता बैठी, बेटा फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाने लगा, तो अचानक माँ पीछे से आई, बोली बेटा रुको। तो दोनों सोचने लगे कि फिर क्या हो गया, कहीं ये वापस घर ना आ जाए, है ना। तो माँ ने उसको बुलाया बेटे को अकेले में, बोला बेटा मैंने तेरे से जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं एक छोटी सी चीज मांग रही हूं। बोले बोलो। बोले इस कमरे में ना पंखा नहीं, एक पंखा लगवा दे। छोटी सी चीज थी, बेटे ने कहा ठीक है। वो गया काउंटर पे, पैसा जमा करा, पैसा जमा कराते टाइम अचानक उसको याद है कि मेरी माँ तो पंखा यूज ही नहीं करती, सारी जिंदगी उसने कभी पंखा यूज नहीं किया। तो ये जब उसको याद आया, वो रिटर्न आया और माँ से पूछा, तुम तो कभी पंखा यूज करती नहीं हो, तुम तो हमेशा बिना पंखा के सोती हो। बोली ये पंखा बेटा मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए लगवा रही हूं, कल जब तेरा बेटा तुझे यहां छोड़ के जाएगा तो तू बिना पंखे के नहीं रह सकता है, इसलिए पंखा मैं तेरे लिए लगवा रही हूं। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन। हम आज संबंधों को यूज करते हैं, रिश्तों को यूज करते हैं, और तो जिंदगी में रिश्तों को महत्व देना बहुत जरूरी है। आप सब थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे प्लीज। ओके, अभी थोड़ी देर आप अपनी सुस्ती, क्योंकि बहुत लंबे समय के एक सेशन ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पैर को खोलेंगे। एक गीत बजेगा, आप सबको ये बहनें आएंगी, आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है, प्लीज प्ले। ओके, थोड़ी देर के लिए फॉरगेट योर पोस्ट पोजीशन, अपनी उम्र आयु सब भूल जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ। ओके, गॉट इट।
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना कल आएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, जो हो ना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा,
अपने लिए बजाइए। ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अच्छा, सेकेंड थिंग है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करें जो है हमारे पास, जितना है उसको स्वीकार करें। बहुत बार हम कंपैरिजन करते हैं। जर्नी ऑफ लाइफ में सबसे खतरनाक जो हमारी जर्नी को पूरी तरह से मतलब खराब कर देती कहें, या पोल्यूटेड कर देती है, या अफेक्टेड कर देती है, वो है कंपैरिजन। हम बढ़िया होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दुख की महसूसता होती है। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, जो है जितना है। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे एक बच्चा है। ये जो बच्चा आप सब है, थोड़ी देर के लिए आप सब फील कीजिए, दिस इज द बॉय, जिसमें उसका जूता फट गया था, तो एक नए जूते के लिए उसने अपने पिताजी से जिद की, तो पिताजी ने एक जूता लेके दिया उसको नया, और जैसे ही नया जूता मिला वो खुश हो गया, जैसे कि यूजुअली हम सब होते हैं। ठीक है, ये जानिए कि ये बच्चा आप हैं, फील कीजिए थोड़ी देर के लिए। तो जब नया जूता मिला वो खुश हो गया और सेलिब्रेट करने लगा। किस लिए सेलिब्रेट कर रहा है? किस लिए सेलिब्रेट कर रहा है? नया जूता मिला, वेरी गुड। मुझे लगेगा ना कि आप सब जाग रहे हैं। तो फिर वो नाचते 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 अचानक उसकी नजर पड़ी कि उसका एक दोस्त उससे बढ़िया जूता पहना हुआ है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वो बच्चा आप हैं तो जवाब आपको देना है। क्या होगा फिर? खुशी गायब हो जाएगी। फिर मन में क्या आएगा? उदासी। उदासी, और फिर मुझे वैसा ही जूता चाहिए। एक कहते हैं, इकोनॉमिक्स में कहते हैं, एवरी वॉन्ट्स क्रिएट ए न्यू वॉन्ट्स। बाबा मुरली में कहते हैं अक्सर कि इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती। हमारे दुख, हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण, जर्नी ऑफ लाइफ में सबसे बड़ा रीजन जो हमें सेड करता है, दुखी करता है, दैट इज हमारी एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं। इच्छाएं हमें अच्छा नहीं बनने देती। एक इच्छा खत्म होती है, कहते एवरी वॉन्ट्स क्रिएट ए न्यू वॉन्ट्स। एक इच्छा पूरी होगी, एक नई इच्छा की उत्पत्ति होगी, है ना? ऐसा ही। तो उसने जिद किया पिताजी को कि मुझे वैसा ही जूता चाहिए। तो पिताजी ने समझाया भी, कल तो तेरे को जूता लेके दिया था, आज फिर कहां से दूं? तो गर्मा गर्मी में पिताजी ने दो चार प्यार मोहब्बत कान के नीचे लगा दिए। फिर वो उदास हो गया, एक गार्डन में बैठा सोच रहा है। अब देखिए, ये हम सबका व्यक्तिगत लाइफ का एक साइकिल है। ये जूता है, कोई और चीज होगा, आप सबने फील किया होगा, छोटी मोटी चीजें जो हमें नहीं मिलती है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है। और नेगेटिविटी क्रिएट्स नेगेटिविटी वेरी फास्टली, दैट इज अ प्रोसेस। जैसे नहीं, खून में पॉजिटिविटी बहुत कम बनती है, लेकिन जैसे कि कल दीदी ने बोला आपको, आप सबने सुना होगा कि हाउ टू चेंज वाइफ विद इन 30 डेज, विद इन 20 डेज। तो 3 लाख कॉपियां बिक गई, लेकिन जब उसको करेक्शन करके हाउ टू चेंज योर लाइफ, तो 3 ही कॉपी बिकी। तो पॉजिटिविटी बहुत जल्दी, बहुत स्लोली चलती है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो उसके मन में आया कि ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा है? किसके लिए, किस चीज के लिए? जूते के लिए, एक मामूली जूते के लिए जिंदगी, जिंदगी ही बोझ लगने लगी, जिंदगी ही खराब लगने लगी। तो सोचा कि ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा है, खत्म करो ऐसी जिंदगी। मरने को तैयार हो गया एक छोटी सी, किसके लिए? तभी अचानक उसकी नजर गार्डन पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, और उसने देखा कि एक बच्चा बहुत खुशी से खेल रहा है, कूद कूद के खेल रहा है, उसका एक पांव नहीं है। एक पांव है, उसमें जूता नहीं है, और एक पांव ही नहीं है, और वो इतना खुश है, मस्त है। तब उसको रियलाइजेशन आया कि देखो, मेरे पास तो दोनों पांव है और जूते भी नए हैं, लेकिन ठीक है वैसे जूते नहीं है, लेकिन नए जूते हैं, और मैं उदास हूं, मरने जा रहा हूं, और ये जो है देखो, एक पैर में, एक पैर ही नहीं है इसका, और ये इतना खुश है। कभी कभी हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ है उसमें ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमारी लाइफ को पोल्यूटेड कर देती है, हमारी लाइफ को, हमारी जो जर्नी को प्रदूषित कर देती है, कई बार दुखी कर देती है। एक कौवा था, उड़ के जा रहा था, तो उसने नीचे हंस को देखा, तो उसको बड़ी गिल्टी फील हुई अपने आप में, बड़ा अपने आप से वो नफरत ही करने लगा, नीचे उतरा कब उसने हंस को बोला कि तुम कितने किस्मत वाली हो, तुम्हारा ये देखो तुम पूरे प्योर व्हाइट हो और मैं काला हूं, मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, मैं कांव कांव करता हूं और तुम इतने व्हाइट हो। तो हंस ने कहा कि नहीं भाई, गलत फहमी में मत रहो, मुझसे बेहतर तो तोता है, मेरा तो सिंगल कलर, एक ही कलर, वो मल्टी कलर है और वो बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स खाती है। तो वो तोता के पास गया, उसको बोला तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे दो दो रंग हैं, इतने अच्छे खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज भी इतनी अच्छी है। वो बोला नहीं, गलत फहमी मत रहो, मुझसे अच्छा तो मोर है, वो मल्टी कलर है, उसके उसके पंख इतने अच्छे हैं। तो मोर के पास गया कौवा, बोला तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर। मोर ने रोते हुए कहा गलत फहमी में मत रहो, मेरी ये सुंदरता ही मेरी शत्रु है, लोग मुझे पकड़ के चिड़ियाघर में डाल देते हैं, मेरे पंख को बच्चे दौड़ दौड़ के तोड़ते हैं, मेरी जिंदगी तो नरक है, तुम सबसे किस्मत वाले हो, आजाद उड़ते हो, जहां चाहे वहां बैठते हो, जहां चाहे वहां जा सकते हो, तुमसे ज्यादा किस्मत वाला, तुमसे साझा खुश नसीब कोई और नहीं है। सो फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग, वॉट एवर वी आर, हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई, हमसे ज्यादा खुश नसीब, लगता है खुश नसीब नहीं है, जोर से आवाज आनी, हमसे ज्यादा खुश नसीब। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट है जर्नी का, बोथ जर्नी, चाहे फिजिकल जर्नी हो चाहे जर्नी ऑफ लाइफ हो, इसमें इंपोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व बहुत जरूरी है। कई बार हम समय को महत्व नहीं देते तो हमारी जर्नी जो है ना, चाहे वो ट्रेन आपकी 7 बजे और आप 7:30 बजे पहुंचो तो क्या होगा, क्या होगा? फ्लाइट आपकी 2 बजे की, आप 2:30 बजे पहुंचो तो क्या होगा? तो टाइम का, और इसमें भी जर्नी ऑफ लाइफ में भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। कहते एक बार स्टेशन पे 4 लोग खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे, व्यर्थ की, इधर उधर की, यूजलेस, कोई काम की नहीं। तो इतने में ट्रेन आई, सब लोग अपने बातों में बिजी है, ट्रेन चल पड़ी, इवन देन वो बिजी है व्यर्थ बातों में। तो अचानक एक की नजर पड़ी कि ट्रेन चलने लगी, तो चारों भागे, पकड़ो 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 पकड़ो, भागे जोर से। तो पहला आदमी पकड़ो 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 करके चढ़ गया, दूसरा भी चढ़ गया, तीसरा, जब तक ट्रेन बहुत तेज हो चुकी थी, पकड़ो 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 पकड़ो, बड़ी मुश्किल से वो चढ़ पाया। अच्छा, जो चौथा आदमी था वो पकड़ो 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 करता रह गया, वो चढ़ नहीं पाया ट्रेन में। अब वंडर की बात यह कि जो 3 व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गए थे वो रोने लग गए, चिल्लाने लग गए कि हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, हम तो लूट गए। किसी ने पूछा, भाई तुम 3 आदमी आए हो, एक आदमी नहीं रहा है, नहीं आया तो इतना रोने की क्या बात है? बोले क्या बताए साहब, जाना तो उसको था, हम तो छोड़ने आए थे। जाने वाला वो था, हम तो बिठाने के लिए आए थे। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे थे, बातें कर रहे थे। भाई साहब आप कहां जाएंगे? बोले मैं दिल्ली जाऊंगा। आप कहां जाएंगे? बोले मैं भी दिल्ली जाऊंगा। आप कहां से आ रहे हैं? बोले मैं माउंट आबू से आ रहा हूं। और आप कहां से आ रहे? बोले मैं भी माउंट आबू से आ रहा हूं। फिर थोड़ी देर, अच्छा आप क्या करते हैं? बोले मेरे कपड़े की दुकान है। आप क्या करते? बोले मेरी भी कपड़े की दुकान है। अच्छा आप दिल्ली किसी लिए जा रहे? बोले मैं कपड़ा लेने जा रहा हूं, गारमेंट्स। आप किस लिए जा रहे? बोले मैं भी इसीलिए जा रहा हूं। अच्छा माउंट आबू में कहां आपकी दुकान है? बोले सदर मार्केट में। अच्छा आपकी कहां है? बोले मेरी भी सदर मार्केट में। अब लोग थक गए जो बैठे थे, बोले भाई तुम एक ही मार्केट में, तुम्हारी दुकान है, एक जैसी दुकान है और एक दूसरे को जानते भी नहीं। बोले नहीं नहीं हम रिश्ते में भाई है दोनों, टाइम पास करने के लिए बातें करें। बहुत बार आपने देखा होगा लोगों को टाइम पास, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए, ये संगम का जो समय है, कहते हैं इफ यू गिव वैल्यू टू टाइम, टाइम विल मेक यू वैल्यूएबल। अगर आप समय को वैल्यू दोगे तो समय आपको वैल्यूएबल बना देगा, अगर आप समय को व्यर्थ गवाओगे तो समय एक दिन आपको व्यर्थ कर देगा। तो जर्नी ऑफ लाइफ में, जीवन में कहां समय देना चाहिए कहां नहीं देना चाहिए, इसका भी इंपोर्टेंस होना बहुत जरूरी है। अक्सर मेन है कि रेस्पेक्ट। अगर हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे तो हम रेस्पेक्टेड बन जाएंगे। एक आप लोग थोड़ा खड़े होंगे प्लीज, हाँ, ताकि सुस्ती ना आए। अच्छा, आप सबको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, 3 सेकंड्स। 3 सेकंड में आपको अपने आसपास में, अपने जो भी साथी हैं, जो भी पास में, आप उनको हाथ जोड़ के विश करना है, ग्रीट करना है। चाहे नमस्ते करो, चाहे हेलो करो, चाहे ओम शांति करो, चाहे गुड मॉर्निंग करो, चाहे जो भी व्हाटएवर आपको करना है घूम के आसपास में। कॉपी टू ऑल नहीं करना है कि सर्वे भवनु सुखी ना, ऐसा नहीं। इंडिविजुअली करना है, एक एक को इंडिविजुअली। जो सबसे ज्यादा लोगों को विश करेगा उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। गॉट इट? समझ गए? तो आपका टाइम शुरू होता अब। ओके, टाइम हो गया, आइए। ओके, आइए प्लीज। ओके, तालियां जोरदार अपने लिए। अच्छा, बैठ जाइए प्लीज, हैव ए सीट। अच्छा, आप में से जिसने मतलब 3 जनों से ज्यादा को विश किया वो हाथ खड़े करो। 3 से ज्यादा? अच्छा, 5 से ज्यादा? जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा, किसी ने मुझे किया? थैंक यू, आपको धन्य। किसी ने किया? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, अभी नहीं, उस टाइम किया क्या? हाँ, वो कहते आसपास, मैं तो अमेरिका में थोड़ी खड़ा हूं। मैं भी बोले, आपने आसपास को बोला, अरे मैं यही तो खड़ा हूं। सॉरी, नहीं, मेरा यह था कि जो जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। किसको कर? सी ए वेरी सिंपल, वेरी ट्रू एंड द वेरी रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। इस छोटे से एक्टिविटीज के द्वारा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, दैट इज, आप सबने मुझे नहीं किया क्योंकि मैंने आपको नहीं किया। अगर मैं आपको करता तो आप मुझे करते। इफ यू गिव रेस्पेक्ट, यू विल टेक रेस्पेक्ट। अगर आप रेस्पेक्ट करोगे तो आप रेस्पेक्टेड बन जाओगे। हम यह सोचे कि सामने वाला मेरा रेस्पेक्ट करे, मैं ना करूं, फॉरगेट इट। वो भले आप ऑफिसर हो, आप डीन हो, आप बॉस हो, तो सामने से करेगा लेकिन पीछे से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, ऑस्ट्रेलिया के एक फ्रोजन हाउस में जो उसका बॉस था, मालिक था, उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो सबको विश करता था, ग्रीट करता था, हाथ मिलाता था। जब वो जाता था, इवन वॉचमैन को भी बोलता था, हेलो कैसे हो मिस्टर एक्स, हो यू, खाना खाया, ठीक हो, ऐसे। और शाम को जाते टाइम उससे फिर हाथ मिलाता था, हेलो मिस्टर एक्स, कैसे हो, ध्यान रखना कंपनी का, ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय करके जाता था। ये उसका रूटीन वर्क था। तो जो वॉचमैन है वो भी अपने को बहुत प्राउड फील करता था। जब उसका बॉस आता था ना तो वो एकदम अलर्ट हो जाता था, है ना। किसी की आप प्रशंसा करो ना तो उसका एक इफेक्ट होता है। एक एक्सपेरिमेंट आप सब करके देखना, आप जो आए हैं उसको छोड़ के, आप अपने किसी फ्रेंड को, जो भाई है वो अपने फ्रेंड को बोले कि आज तुम बहुत हैंडसम लग रहा है, आप पूरा दिन उसकी चाल देखना, एकदम स्ट्रेट रहेगा, वो शर्ट में क्रीस भी नहीं आने देगा। आप खाली एक्सपेरिमेंट करके देखना, मेरा नंबर लेना, मुझे फोन करना कि एक्सपेरिमेंट क्या पड़ा। आप कि अपने किसी दोस्त को खाली इतना बोलो, यार आज तू बहुत हैंडसम लग रहा है, वो देखो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। घुटनों में दर्द होगा ना तो भी स्ट्रेट चलेगा, मतलब घुटनों में नी की प्रॉब्लम भी होगी ना तो भी वो स्ट्रेट चलेगा। बहने अगर किसी सहेली को बोलोगे ना, आप तुम बहुत, आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, देखो 4-5 बार तो कम से कम वो आईना देखेगी भी, या 4 या 5। सी, छोटी सी एक्टिविटीज के मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो वो जो फ्रोजन हाउस का जो ओनर था, वो उसकी ये आदत थी, रेगुलर वो करता था। और जब वो आता था तो वो वॉचमैन एकदम स्ट्रेट हो जाता था, उसको ऐसा लगता जैसे भगवान मुझसे मिलने आ रहे। क्योंकि मालिक उसको हाथ मिला के ग्रीट कर रहा है, उसको हेलो कर रहा है, तो सोचो एक, तो वो इंतजार करता है सुबह मालिक के आने का टाइम और जाने का टाइम, बड़ा इंतजार करता है। एक बार क्या हुआ, बाय मिस्टेक वो फ्रोजन हाउस के अंदर गया, और वो बाय मिस्टेक या टेक्निकली उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम था, वो अंदर से लॉक हो जाता था, उसका जो ओपनर है वो बाहर से था। तो वो फ्रोजन हाउस के अंदर गए और मिस्टेक से वो दरवाजा बंद हो गया, लॉक हो गया, -30 टेम्परेचर। धीरे 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 वो सुकुड़ने लगा ठंडी से, ब्लड उसके जमने लगे, और धीरे 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 वो सेंसलेस होने लगा, बेहोश होने लगा। ऑफिस के स्टाफ सब जाने लगे, एक एक करके जा रहे, वॉचमैन वेट कर रहा था, क्योंकि वो सर जब उसको गुड बाय करके जाते हैं उसके बाद ही वो रिलैक्स होता था, तब तक वो ऐसे रहता था, उसको मालूम है मालिक के आने का टाइम है, तो ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहता था। तो उस दिन वो काफी स्ट्रेट खड़े खड़े उसकी कमर दुखने लगी, तो देखने गया अंदर कि कारण क्या है, क्यों नहीं आए सर, तो देखा कि रेड लाइट जल रही थी, तो समझ गया उसने, फटाफट खोला उसको और एम्बुलेंस बुलाया, हॉस्पिटलाइज कराया, जैसे तैसे उसकी जान बच गई। किसने बचाई जान, माई क्वेश्चन इज, जान किसने बचाई जी? सॉरी, कोई कॉर्डलेस है क्या? किसने बचाई? वॉचमैन ने बचाया। वेरी गुड, तालियां जोरदार। उसको बचाया उसके नेचर ने, उसके जो जो अच्छे गुण थे, जो सबके हाथ मिलाता था, सबसे मतलब मिलता जुलता था। तो जर्नी ऑफ लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो इफ यू रेस्पेक्ट अदर्स देन यू विल बी रेस्पेक्टेड। ये आज का दो जर्नी ऑफ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, दैट इज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी, 90% हमारी जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका ज्यादातर रीजन हमारी सोच होती है। अच्छा, आप सबने रामायण देखी है? रामायण पढ़ा होगा, देखा है? हाथ खड़े कीजिए जिसने देखा। रामायण में एक कैरेक्टर है मंथरा, जानते हैं? जानते हैं? कैसा कैरेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा अच्छा, अब इसी कैरेक्टर को दूसरे एंगल से सोचिए कि अगर मंथरा ये चक्रव्यूह ना करती और रामचंद्र वनवास नहीं जाते, तो इतने सारे असुरों का वध होता, इतने सारे ऋषि मुनियों का उद्धार होता? अच्छा, आप बताइए, मंथरा नेगेटिव है पॉजिटिव है? जोर से जोर से। एक सेकंड पहले आप क्या कह रहे थे? सॉरी, एक सेकंड पहले आप क्या कह रहे थे? व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, जस्ट अपनी सोच बदलो। कल मीरा दीदी बोल रही थी ना, कमल दीदी कह रही थी कि सोच बदलो तो संसार बदल जाएगा, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, आप खाली अपने दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, है ना? अभी आपने सोचा कि मंत्रा ने ऐसा किया, इसके कारण रामचंद्र जी वनवास गए, लेकिन जब आपने दूसरे एंगल, एवरी कॉइन हैज टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को पॉजिटिव करो, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, एक चर्च में एक प्रिस्ट थे, सुनिए केयरफुली, चर्च में एक प्रिस्ट थे और वो एक मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे पॉजिटिविटी के ऊपर। वो कहते थे कि लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ना, स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट है। स्किल ना हो तो भी चलेगा, लेकिन विल पावर, अगर आपके अंदर विल पावर है, ही सेड इफ हैव विल पावर यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हो, अगर आपका विल पावर मजबूत है, विल पावर स्ट्रांग है, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। इफ यू हैव स्ट्रांग विल पावर You can do whatever you want to do. Nothing is impossible for you. लोगों ने ताली बजाई, बहुत प्रशंसा किया. धीरे धीरे लोग जाने लगे, सब चले गए. एक लड़का बैसाखी के ऊपर खड़ा था, पैरालाइज्ड. उसको ही इज पैरालाइज्ड विद हिज राइट लेग. राइट लेग से वो पैरालाइज था और बैसाखी के भरोसे चलता हुआ आया उनके पास. एंड ही आस्क्ड ए क्वेश्चन टू द प्रीस्ट, फादर आई वॉन्ट टू बी अ रनर. मैं एक धावक बनना चाहता हूं, ओलंपिक में या विश्व में सबसे तेज भागने वाला धावक बनना चाहता हूं. एंड यस आई हैव ए विल पावर, ए स्ट्रांग विल पावर. कैन आई डू दिस? सो माई क्वेश्चन, कैन ही डू दिस? कैन ही डू दिस? ही इज पैरालाइज्ड. ही इज पैरालाइज्ड विद हिज राइट लेग. क्या वो एक धावक बन सकता है? फादर को भी ऐसा लगा कि बोलना तो अलग बात है, बोल तो दिया मैंने मोटिवेशनली, लेकिन ये तो पैरालाइज, चल नहीं पा रहा है, बैसाखियों पे चल रहा है, ये कैसे एक रनर बन सकता है? सो उसने बोला, धीरे से बोला, हा इफ यू ट्राई यू कैन बी. ही सेड, फादर यू टोल्ड मी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने ये कहा, इफ यू हैव स्ट्रांग विल पावर यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो आई जस्ट वॉन्ट टू, आई जस्ट विश फॉर दिस, कैन आई डू दिस? देन फाइनली गुस्से में उसने बोला, नो यू कांट डू दिस, यू आर पैरालाइज, हाउ कैन यू डू दिस? चला गया. फादर बोल के चले गए. वो लड़का ठीक 8 साल के बाद, कार्ल लुइस के नाम का वो लड़का, ठीक 8 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाला रनर बना. एंड नॉट ओनली वंस, 3 टाइम का गोल्ड मेडलिस्ट. आप सर्च करेंगे कार्ल लुइस, तो वो 3 टाइम का गोल्ड मेडलिस्ट बना. पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, सोच में, संकल्प में, हमारे एक्टिविटीज में. अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो बहुत बार क्या होता है, हमारे थॉट से ही सब कुछ शुरू होता है. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं. सुबह जब आप उठते हैं, मॉर्निंग में, शॉर्ट में करते हैं थोड़ा, एक चीज अंडरलाइन कीजिए. जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, वेरी सिंपल, आप सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. मॉर्निंग में जब आपकी आंख खुलती है तो एक आप रूटीन बना लीजिए, एक अपनी आदत बना लीजिए कि एक गुड मॉर्निंग उस परमात्मा को कीजिए उठते ही. पहला गुड मॉर्निंग. आज कोई व्यक्ति हमें थोड़ी सी भी मदद करता है, हम उसको 100 बार शुक्रिया करते हैं. उस गॉड का, उस परमात्मा जिसने पूरी कायनात बनाई, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, हमारा जीवन, सब उसका देन है. तो उसको थैंक्स नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते. तो पहला गुड मॉर्निंग उसको बोलना है और अपने आप को एक प्रॉमिस करना है. क्या प्रॉमिस करना है? कि टुडे इज गोइंग टू बी ए गुड डे फॉर मी. क्या? आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है. क्या बोलेंगे? आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है. तो आज का दिन, सुबह आप, अच्छा दिन हो ना हो, लेकिन जब सुबह आप अपने आप से ये वादा करेंगे ना दैट टुडे इज गोइंग टू बी अ गुड डे फॉर मी, सो द डे विल बी गुड ऑटोमेटिकली. अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत मजा आएगा. तो पॉजिटिविटी अपने जीवन में धारण करनी है. हाँ, एक चीज है कि जो नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना है. नेगेटिविटी को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक बुक पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे. 3 नेगेटिव वर्ड को आप चेंज कर लो पॉजिटिव में. उन्होंने, वैसे तो पूरी किताब में बहुत सारी बातें हैं, सब शेयर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. 3 वर्ड है. पहला है नो, NO. अक्सर हमें जब 2-3 बार कहीं से नो मिल जाता ना तो हम फेड ऑफ हो जाते हैं. कोई हमें बोले कि नो. एक बुजुर्ग आदमी के पास पुरानी घड़ी थी, वो बंद पड़ी थी, किसी काम की नहीं थी, बहुत, मतलब उनके फादर की घड़ी थी, तो वो उसको बेचने के लिए गया दुकान पे, तो दो तीन दुकान पे वो गया तो उन्होंने बोला ये घड़ी किसी काम की नहीं है, बंद पड़ी है, तो पुराने जमाने की है, किसी काम की नहीं है, ले जाओ। तो वो जो बुजुर्ग बहुत मायूस हो गया, उदास भी हो गया। तभी कोई व्यक्ति मिला, बोला चलो आप तीन चार दुकान आप एक और दुकान पे पूछते हैं। तो उस दुकान पे गया, उसने घड़ी देखी, बड़ा खुश हुआ, बोला ये तो एंटीक है, इसकी कीमत तो लाखों में। तो नो को चेंज करो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एन नो नो फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति आईटी कंपनी में पीएन की नौकरी के लिए गया, क्योंकि उसको नौकरी की बहुत जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, पढ़ा लिखा था लेकिन वैकेंसी पीएन की थी। तो वो वहां पे गया और उसने जब फॉर्म भरा, तो जो फॉर्म भर रहा था उसने उससे ईमेल आईडी पूछा कि सर आपका ईमेल आईडी, एंड ही सेड आई डोंट हैव एनी ईमेल आईडी। वो यू डोंट हैव एनी ईमेल आईडी, तो उसने उसके कागज डॉक्यूमेंट फेंक दिए, सॉरी नो। फिर वो एक दुकान पे गया, बोला मुझे दुकान पे सेल्समैन रख लो। बोले आपको कितने साल का अनुभव है? बोले नहीं मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, नो। तो बड़ा उदास हो गया, मायूस हो गया, ऐसे खड़ा था पेड़ के नीचे। तो एक सब्जी बेचने वाला, उसने पूछा क्या हुआ सर? बोले ऐसे ऐसे यार, जहां मैं किसी काम की नहीं है जिंदगी, वो सारे वर्ड्स उसको याद आ रहे थे, नो 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 नो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी किसी काम के नहीं हो। तो उसने बोला आपके पास कितने पैसे? बोले 250 रुपए। बोले निकालो। 250 रुपए के होलसेल मार्केट से सब्जी ली, टमाटर ली, बेचने लगा, 300 मिल गए, 350 मिल गए। देखते 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 8-10 साल के अंदर वो शहर का सबसे रईस सब्जी का होलसेलर बन गया, जिसके बहुत सारे गोदाम थे, जिसके बहुत सारे ट्रक थे। तब एक इंश्योरेंस कंपनी वाला आया और उससे पूछा कि सर आप इंश्योरेंस करा लीजिए। तो बोला कर लीजिए। तो उसमें एक कॉलम था ईमेल आईडी का। तो बोला सर आपका ईमेल आईडी? बोला आई डोंट हैव एनी ईमेल। सर यू आर जोकिंग, यू डोंट हैव एनी, यू आर ए मिलियनेयर, यू डोंट हैव एनी ईमेल आईडी? ही सेड यस आई डोंट हैव एनी ईमेल आईडी। अगर मेरा ईमेल आईडी होता तो मैं आज उस आईटी कंपनी का पीओन बन के बैठा होता। मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी, इसलिए मैं आज मिलियनेयर बन के बैठा हूं। सो नो का कई बार ऐसा होता है कि एक परमात्मा ने एक गेट बंद किया तो दूसरा खोलता है। मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है। दूसरा है फेल। कई बार हम फेल हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। आपने इतिहास में देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में फेल हो गए लेकिन खेल कूद में बहुत नाम किया है ना। तो अब्दुल कलाम जी फेल को डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो जीवन में कई बार फेल होके भी हम आगे बढ़ते हैं। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और अपने दिल पर भी नहीं लेना। और तीसरा है एंड, ENDED। जब हम कहते हैं ना एंड, खत्म हो गया, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कभी भी जीवन में सरेंडर नहीं करना है, खत्म कुछ नहीं होता है। तो एंड का जो डिस्क्राइब उन्होंने किया है कि एफर्ट नेवर डाइज, जो मेहनत आप करते हो कभी खत्म नहीं होता है। दो लड़के थे, उनको फांसी की सजा हुई, जो राजा था उसने फांसी की सजा सुनाई। तो फांसी से एक दिन पहले उसने पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा तो बताओ। तो एक ने बोला नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं, बोले इसको काल कोठरी में डाल दो। दूसरे ने सोचा कि मरना तो है ही है। उसको मालूम था राजा के पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा है और राजा उससे बहुत प्यार करता है। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे 6 महीने का टाइम दो तो मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं? आपके घोड़े को। तो राजा थोड़ी देर के लिए रुका, बोला ये पागलपना है, मेरा घोड़ा कैसे उड़ सकता है? तुम सच बोल रहे हो? बोला यस, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं, मुझे 6 महीने का टाइम दो। तो राजा ने कहा ठीक है, इसकी फांसी 6 महीना रोक दो। अगर तूने 6 महीने में घोड़े को उड़ने वाला नहीं बनाया तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी। तो वो आया, तो जब वो बैरक में आया उसके दोस्त ने पूछा तूने झूठ क्यों बोला? बोला देख, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि घोड़ा भी बुजुर्ग हो गया है, क्या पता 6 महीने में घोड़ा ही लुढ़क जाए। दूसरा, राजा भी कोई यंग नहीं है, क्या पता 6 महीने में वही निकल ले, है ना। तीसरा क्या पता घोड़ा उड़ने लग जाए, और चौथा उसने कहा कुछ हो या ना हो तेरे से 6 महीना ज्यादा जीऊंगा मैं। पॉसिबिलिटीज नंबर 4 कि कुछ नहीं भी होगा। एक जावेद अख्तर साहब की एक शायरी है, क्या सोचें जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है ना। तो लाइफ में गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारी बहन जी इसी के ऊपर का आपको एक गीत सुनाएगी, बाहर बारिश भी हो रही है, आइए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा।
ओम शांति, ट्रैक प्लीज। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम में उसके रहते हर किस हुआ पड़ा है। कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो टाइम हो गया, भूख तो नहीं लगी? सच बताना, हमारे में कहावत है, भूखे भजन न भई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है ना? भूख तो नहीं लगी? थोड़ा दो स्लाइड्स और आगे करें कंटिन्यू, अगर आपकी इजाजत हो तो। ओके, अभी आपने सुना फेथ इन गॉड, परमात्मा पे भरोसा, गीत भी सुना आपने। छोटे बच्चे को कभी आपने हवा में उछाला ऐसे? उछाला है? जिन्होंने उछाला हाथ खड़े कीजिए। छोटा बच्चा वो क्या करता है? हंसता है ना? थोड़ा और जोर से उछालते तो और तेज हंसता है क्या नहीं? आप सबने अनुभव किया ऐसा? अच्छा, आप में से किसी को उछालें तो? अभी करें एक एक्सपेरिमेंट, करें, आप मुस्कुराओगे? सी द डिफरेंस इज व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, सी द डिफरेंस इज, वो छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है जिंदगी के बारे में, जितना समय वो हवा में रहता है उसके चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, हंसी रहती है। वहीं जब बड़ा है, जितने समय हवा में रहता है उसके चेहरे पर भय, घबराहट, परेशानी। जानते हो क्या है रीजन? क्योंकि वो छोटा बच्चा, उसको ये भरोसा है कि ये जो हाथ मुझे उछाल रहे हैं ये मुझे गिरने नहीं देंगे, ये मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। तालियां बजाओ जोरदार। लेकिन जो बड़ा है उसको संशय, अगर छोड़ दिया तो, अगर गिर गए तो, हड्डी टूट गई तो ये संशय है। परमात्मा पे भरोसा, जीवन की इस यात्रा को अगर आप सुखद, सुखमय और यादगार बनाने चाहते हैं तो उस ईश्वर पे भरोसा जरूर रखें। जीवन में जो हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ये एक भरोसा आपको जीवन में बहुत आनंदमय बना दे। खुद पे भी कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को भी समझें और उस परमात्मा को धन्यवाद जरूर करें। ठीक है, कहते हैं परमा, एक गुरबाणी में है कि कई पैरां तो नंगे फिर दे, सिरते लब दे छामा। कई पैरां तो नंगे फिर दे, सिरते लब दे छामा, मैनू दाता ने सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। मतलब कईयों के पैर में जूते भी नहीं है, कईयों के सिर पे छत भी नहीं है, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं क्यों उसका धन्यवाद ना करूं। मैंने कि अब सबसे बड़ी बात है जर्नी ऑफ लाइफ में, इफ यू वांट टू मेक योर जर्नी ऑफ लाइफ वैल्यूएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू गिव वैल्यू योर सेल्फ। अपने आप को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। कई बार जीवन में, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें निक बोजी करके एक व्यक्ति है, आप में से बहुत जने जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ ये निक, जिसके हाथ पैर दोनों नहीं है। जब ये पैदा हुआ था इसी कंडीशन में पैदा हुआ था, मां छोड़ के भाग गई, पिता भी छोड़ के चले गए, हॉस्पिटल में एक हफ्ता पड़ा रहा। फिर पिताजी आए वापस तो पिता के दोस्तों ने समझाया, तू क्या करेगा इसको, मांस का पिंडला है ये, 24/7 तेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, अपने से कुछ भी नहीं कर सकता है, इसको खत्म कर दो। लेकिन बाप ने कहा नहीं, अगर ये परमात्मा ने ये मुझे चैलेंज दिया है तो मुझे उसका चैलेंज स्वीकार है। उन्होंने निक को पढ़ाया लिखाया, निक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। हर वो काम निक ने किया जो दुनिया ने कहा कि संभव नहीं। निक स्विमिंग करता है, बीई कंप्यूटर से किया है, और आज निक एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो एक स्पीच, एक घंटे के एक स्पीच के इंडियन करेंसी के हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए लेता है। और निक जो है वो एक ट्रस्ट चलाता है जहां उसने अपने जैसे हजारों डिसेबल बच्चों को पनाह दी है, उनको एजुकेट करता है, उनको शिक्षित करता है। सो ए सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ इससे ज्यादा है? 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 क्या हमारा दर्द, हमारे दुख हमारी तकलीफ निक से ज्यादा है, लेकिन उसने जीवन को मोटिवेट किया। चैलेंजेस आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, रुकावटें भी आती है, लेकिन वो रुकावटें हमारे मार्ग को ना बदल सके। हमारे जो मोटिव है, हमारी जो मंजिल है, उसको ना रोक सके। उसके लिए स्ट्रांग विल पावर होना जरूरी है, और स्ट्रांग विल पावर का बेस है फेथ इन गॉड एंड सेकेंड मेडिटेशन, और तीसरा है खुश रहना है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हर हालत में खुश रहना है। ठीक है, ओके। तो मैं बाइंड अप करता हूं एक गीत के साथ, आप सब खड़े हो जाइए। खुशी खुशी एक खुशनुमा याद लेकर जाएंगे। सब खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, सब बच्चे बन जाइए, छोटा सा डांस कीजिए, हंसते हंसते खाना खाने जाइए, 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे आप। ओके ओके स्टार्ट, प्लीज कम, आ जाओ जल्दी आओ।
तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में किसी भी चाल में हिम्मत न हार मुस्कुराए जा।
थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। धन्यवाद आप सबका। ओम शांति।